Language recordings. देखो सुनो और जियो बाइबल की तस्वीरी कहानी चौथी किताब खुदा के खादिम अजीज दोस्तों, खुदा उन सब लोगों से मोहब्बत करता है और उनकी फिक्र करता है जो उसकी खिदमत करते और उसका हुक्म बजा लाते हैं। जब आप पीले रंग की किताब वाली तस्वीरें देखें तो इन सच्ची कहानियों पर गौर करें। इस इशारे या म्यूजिक के बाद अगली तस्वीर देखें। आइए अब हम शुरू करें। तस्वीर नंबर एक, कहत से फरार। खुदा ने तमाम इंसानों को बनाया लेकिन वो खुदा से फिर गए। फिर खुदा ने इसराइल के लोगों को चुना ताकि वो उसे जाने और उसकी इबादत करें। लेकिन कभी कभी बनी इसराइल भी खुदा के खिलाफ बगावत और दूसरे लोगों की मानिंद बुतों और झूठे खुदाओं को मानने लगते। खुदा ने बनी इसराइल पर कहत और जंग का अजाब नाजिल किया ताकि वो उसकी तरफ वापस फिरें। सिर्फ एक खानदान मुआब की सरजमीन की तरफ खुराक की तलाश में निकला। वो इस अजनबी मुल्क में 10 बरस तक रहे। बाप वहीं फौत हो गया। दो बेटों ने मुआबी लड़कियों से शादी की, फिर वो दोनों भी मर गए और सिर्फ माँ अपनी दोनों बहुओं के साथ इस अजनबी मुल्क में अकेली रह गई। तस्वीर नंबर दो, नौमी और रूत सरजमीने इसराइल में लौट आए। इस खानदान की मां का नाम नौमी था, इसकी मुआबी बहुओं का नाम रूत और उर्फा था। नौमी ने सरजमीन इसराइल में लौट जाने का फैसला किया। इस सफर में रूत और उर्फा उसके साथ रहीं। तब नौमी ने उनसे कहा, तुम दोनों अपने मेके वापस चली जाओ, तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? अब मेरे कोई और बेटे तो नहीं होंगे जिनसे तुम ब्याही जा सको। खुदा मुझसे नाराज है। उर्फा ने अपनी सास को चूमा और अपने मेके चली गई, लेकिन रूत नौमी से लिपटी रही और उसने कहा, तू मुझे मजबूर न कर कि मैं तुझे छोड़ दूं। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। सो रूत नौमी के साथ इसराइल की सरजमीन में बैतलहम के मकाम पर पहुंची। तस्वीर नंबर तीन, रूत जौ के खेत में। नौमी और रूत बहुत गरीब थे। रूत ने नौमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और बालें चुनूं। सो वो एक खेत में गई जहां मजदूर जौ की फसल काट रहे थे। उस खेत के मालिक का नाम बोएज था। उसने मजदूरों से इस अजनबी लड़की के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो एक मुआबी लड़की है जो नौमी के साथ आई है। बोएज को बताया गया कि उसने अपनी सास के साथ बहुत अच्छा सुलूक किया है। उसने देखा कि वो एक अच्छा काम करने वाली लड़की है। चुनाचे उसने रूत से कहा, जब तक मेरे मजदूर सारी फसल न काट लें तुम यहीं काम करना। उसने अपने मजदूरों से कहा, उसे नुकसान न पहुंचाएं बल्कि उसके लिए कुछ अनाज छोड़ दें ताकि वो इकट्ठा कर सके। उसी शाम रूत ने घर पहुंचकर नौमी से بوئس کی مہربانیوں کا ذکر کیا. نعومی نے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے، وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے. تصویر نمبر 4، روت اور بوئز کھلیان میں. موسوی شریعت کے مطابق اسرائیل میں جب کسی آدمی کی موت ہو جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس مرے ہوئے آدمی کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے. ایک دن نعومی نے روت سے کہا، میں چاہتی ہوں تیری شادی ہو جائے تاکہ تیرا اپنا گھر ہو. بوئز ہمارا رشتہ دار ہے، وہ آج شام اناج صاف کرے گا، سو تو نہا دھو کر اور اچھی پوشاک پہن کر کھلیان میں چلی جانا، دیکھنا کہ وہ کہاں سوتا ہے، اور جب وہ سو جائے تو اس کے پاؤں کے پاس لیٹ جانا. روت نے بالکل وہی کیا جیسے نعومی نے اسے سمجھایا تھا. جب بوئز جاگا تو اس نے روت کو اپنے پاؤں کے پاس پایا، تب وہ جان گیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. چنانچہ اس نے کہا، روت جو کچھ تو چاہتی ہے میں وہ سب کچھ کروں گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ تو ایک اچھی عورت ہے. تصویر نمبر 5، بوئز اور بیت لحم کے بزرگ. بوئز نے بیت لحم کے پھاٹک پر 10 بزرگ آدمیوں کو بلایا. ایک اور رشتہ دار کا روت کے ساتھ شادی کرنے کا پہلا حق تھا، لیکن سب اس بات پر متفق ہوئے کہ بوئز اس سے شادی کرے. چنانچہ بات پکی کرنے کے لیے اس رشتہ دار نے اپنا جوتا بوئز کو دے دیا. یہ اسرائیل میں ایک رسم تھی. چنانچہ بوئز نے روت سے شادی کر لی. ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبید رکھا. تب عورتوں نے نعومی سے کہا، خداوند کے نام کی تعریف ہو جس نے تجھے ایک پوتا دیا، وہ بڑھاپے میں تیرا سہارا بنے گا، تیری بہو تجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے. دوستو، روت بہت خوش تھی جب وہ خداوند اور اس کے لوگوں کی خدمت کرتی تھی، اور عبید وہ شخص ہے جو اسرائیل کے عظیم بادشاہ داؤد کا دادا ہوا. تصویر نمبر 6، مریم اور خدا کا فرشتہ. روت کی بہت سی پشتوں کے بعد خدا نے ایک اور عورت کو چنا. اس کا نام مریم تھا، وہ روت کی نسل سے تھی. مریم کنواری تھی، وہ یوسف نام ایک مرد سے منسوب تھی، لیکن اس کی شادی سے پہلے خدا کا فرشتہ مریم کے پاس آیا. اس نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا. مریم نے فرشتے سے کہا، میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب خدا کا پاک روح اس پر نازل ہوا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. چنانچہ مریم یسوع کی ماں بنی جو خدا کا بیٹا ہے. تصویر نمبر 7، حنا کی خدا سے دعا. اسرائیل کی سرزمین میں حنا نام کی ایک عورت تھی. اس کا شوہر اسے بہت چاہتا تھا، لیکن وہ بہت اداس رہتی تھی کیونکہ وہ بے اولاد تھی. ہر سال وہ دونوں اپنے شہر سیلا میں خدا کے گھر جاتے. وہ اپنے ساتھ نظریں لے جاتے اور خدا کے حضور قربانی گزرانتے. حنا خدا کے گھر میں گئی اور یہ دعا مانگی، اے خدا، اگر تو مجھے یاد فرمائے اور بیٹا عطا کرے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے تیری نظر کروں گی. جب وہ خدا سے یہ دعا کر رہی تھی تو فقط उसके होंठ हिल रहे थे और उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बड़े मजहबी रहनुमा एली ने देखा तो उसे गुमान हुआ कि वो नशे में है। खुदा ने हन्ना की दुआ सुन ली और कुछ अरसे के बाद उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा। तस्वीर नंबर 8। नन्ना सैमुएल खुदा के घर में। सैमुएल अभी छोटा था कि हन्ना ने उसे खुदा की नजर कर दिया। वो उसे सैला में एली के पास छोड़ने के लिए ले गई। एली ने सैमुएल को खुदा की खिदमत करना सिखाया। एली के दो बेटे थे, वो मजहबी रहनुमा थे लेकिन वो शरीर थे, लिहाजा खुदा ने अपने लोगों से मजहबी रहनुमाओं के जरिए हम कलाम होना बंद कर दिया। एक रात सैमुएल खुदा के घर में लेटा हुआ था, अचानक खुदा ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। सैमुएल भागा भागा एली के पास गया और कहा, आपने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हूं। मगर एली ने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। ऐसा 3 बार हुआ। तब एली को महसूस हुआ कि खुदा सैमुएल को पुकार रहा है। बस उसने सैमुएल को बताया, अगर खुदा तुझे इस बार पुकारे तो इस तरह जवाब देना, खुदावंद फरमा तेरा खादिम सुनता है। खुदा कई मर्तबा सैमुएल से हम कलाम हुआ। वो इसराइल का एक अजीम मजहबी रहनुमा और सरदार बना। तस्वीर नंबर 9। सैमुएल बनी इसराइल के लिए दुआ करता है। खुदा ने एली के शरीर बेटों को सजा दी, वो एक जंग में मारे गए और फिलिस्तीनियों ने बनी इसराइल को शिकस्त दी। तकरीबन 20 बरस तक फिलिस्तीनियों ने बनी इसराइल पर हुकूमत की। तब सैमुएल ने लोगों से कहा, अगर तुम अजनबी देवताओं को अपने बीच से दूर कर दो और अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करो और उसकी खिदमत करो तो वो तुम्हें फिलिस्तीनियों के हाथ से रिहाई देगा। बनी इसराइल ने सैमुएल के कहने पर अमल किया और वो एक जगह इकट्ठे हुए। सैमुएल ने खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजरानी और बनी इसराइल के लिए दुआ की। फिलिस्ती इसराइल पर हमला करने के लिए जमा हुए। खुदा ने उन पर एक खौफनाक तूफान नाजिल किया। फिलिस्ती खौफजदा होकर भागे और बनी इसराइल ने उन पर फतह पाई। तस्वीर नंबर 10। सैमुएल ने साउल को मसह किया। खुदा बनी इसराइल का हकीकी बादशाह था और सैमुएल अपने लोगों की रहनुमाई करता था, लेकिन बनी इसराइल इर्द गिर्द के कबीलों की तरह अपने लिए भी एक बादशाह चाहते थे। सैमुएल को जब इस बात का पता चला तो वो नाराज हुआ, लेकिन खुदा ने उससे कहा, उन्होंने तुझे नहीं मुझे रद्द किया है कि मैं उनका बादशाह न रहूं। लोगों की बात सुन और उनके लिए किसी को बादशाह मुकर्रर कर। उस वक्त वहां साउल नामी एक नौजवान था, वो कदावर और खूबसूरत था। एक दिन साउल सैमुएल से मिलने गया। जब सैमुएल ने उसे आते देखा तो खुदा ने सैमुएल से कहा, यही वो शख्स है जो मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। चुनाचे सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और तेल उसके सर पर उंडेल दिया। ये इस बात का निशान था कि वो बादशाह होने के लिए चुना गया है। साउल ने 40 बरस तक बनी इसराइल पर हुक्मरानी की। तस्वीर नंबर 11। साउल ने सैमुएल का जुब्बा फाड़ दिया। अमालेकी बहुत बुरे लोग थे, उन्होंने बनी इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। पर सैमुएल ने साउल बादशाह से कहा, खुदा का हुक्म सुन, तमाम अमालेकियों को मार दो, उनकी हर चीज को फना कर दो। खुदा ने अमालेकियों को शिकस्त देने में साउल और उसकी फौज की मदद की, लेकिन उन्होंने खुदा का हुक्म न माना। انہوں نے امالیکیوں کے اچھے جانور خداوند کے حضور قربانی گزراننے کے لیے بچا لیے، نہ ہی انہوں نے امالیکیوں کے بادشاہ کو مارا۔ تب سیموئل نے ساؤل سے کہا، چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ سیموئل جانے کو مڑا اور ساؤل نے اس کا جبا پکڑ لیا اور وہ اس کے ہاتھوں میں پھٹ گیا۔ تب سیموئل نے کہا، خداوند نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کو تجھ سے چھین کر ایک بہتر آدمی کو دے دیا ہے۔ دوستو، ساؤل نے خدا کے حضور قربانی گزرانی، لیکن اس نے اس کا حکم نہ مانا۔ سیموئل نے عمر بھر خدا کی خدمت کی اور اس کا حکم مانا۔ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، کیا مذہبی فرائض ادا کرنا یا خدا کا حکم ماننا؟ تصویر نمبر 12، یسوع خدا کی ہیکل میں۔ سیموئل کے بہت عرصہ بعد یسوع سرزمین اسرائیل میں پیدا ہوا۔ مریم اس کی ماں تھی، لیکن خدا اس کا باپ تھا۔ یسوع جب 12 برس کا ہوا تو وہ مریم اور یوسف کے ساتھ یروشلم گیا۔ یسوع بھیڑ میں کھو گیا اور مریم اور یوسف اسے ڈھونڈتے پھرے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اسے خدا کے گھر میں یہودی عالموں کے درمیان خدا کے متعلق بحث کرتے ہوئے پایا۔ مریم نے اس سے کہا، ہم پریشانی کے عالم میں تجھے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع نے کہا، مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ جب یسوع سیموئل کی طرح لڑکا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ دنیا میں خدا کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یسوع تمام لوگوں کا خدا سے دوبارہ ملاپ کرانے کے لیے آیا، کیونکہ صرف خدا ہی انسانوں کا حقیقی بادشاہ اور رہنما ہے۔ خدا کے خادم۔ عزیز دوستو، ان عظیم بزرگوں میں جو اس دنیا میں آئے، چند خدا کے خادم تھے۔ ان کہانیوں سے ان کی بزرگی کے راز کا پتہ چلتا ہے۔ اس اشارے یا میوزک کے بعد اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 13، داؤد ایک بہادر چرواہا۔ ساؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، لیکن اس نے خدا کی نافرمانی کی، بس خدا نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اس کی مدد نہ کی۔ اسی زمانے میں داؤد نامی ایک نوجوان تھا، وہ اپنے باپ کے ریوڑ کی نگہبانی کرتا تھا۔ اس کا ایمان زندہ خدا پر تھا، وہ کسی بھی خطرے سے نہیں گھبراتا تھا۔ ایک دن شیر نے ایک بھیڑ اٹھا لی، داؤد نے شیر کو مار دیا اور بھیڑ کی جان بچا لی۔ وہ بڑی خوبصورتی سے بربت بجاتا تھا اور خدا کی حمد کے گیت گایا کرتا تھا۔ داؤد ایسا آدمی تھا جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی بنے۔ چنانچہ خدا نے داؤد کو ساؤل کے بعد بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا۔ تصویر نمبر 14، داؤد اور دیو ہیکل فلسطی۔ فلسطینیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ फिलिस्तियों का एक पहलवान था जिसका नाम जूलियत था। उसने बनी इसराइल को ललकारा और कहा, तुम में कोई ऐसा मर्द है जो मुझे हिला कर दे? अगर ऐसा हो जाए तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर मैंने उसे हिला कर दिया तो तुम जरूर हमारे गुलाम बन जाओगे। इसराइली जवान जूलियत से बहुत खौफजदा थे, कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब नौजवान दाऊद ने कहा, ये फिलिस्ती कौन है जिसे खुदा की ताकत का इल्म नहीं? उसे जिंदा खुदा के लश्कर को यूं नहीं ललकारना चाहिए। दाऊद उससे खायफ नहीं था, खुदा उसे इस देव हैकल फिलिस्ती को हिला करने की ताकत दे सकता था। पस दाऊद ने अपना फलाखन लिया और एक पत्थर चुना और उसको सीधा देव हैकल फिलिस्ती के सर में दे मारा। जूलियत जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा और दाऊद दौड़कर उसके पास चला गया। उसने जूलियत की तलवार खींची और उसका सर काट दिया, और यूं बनी इसराइल के लश्कर ने फिलिस्तियों को शिकस्त दी। तस्वीर नंबर 15। साउल दाऊद को कत्ल करने की कोशिश करता है। शुरू शुरू में साउल दाऊद से बहुत खुश था, क्योंकि उसने बनी इसराइल को बचाया था। बनी इसराइल दाऊद से बहुत मोहब्बत करते थे। वो एक बहुत नामवर सिपाही और सरदार बना। तब साउल दाऊद से हसद करने लगा, वो दाऊद को कत्ल करना चाहता था। एक दिन दाऊद बर्बत बचा रहा था, एक बुरी रूह साउल पर हावी हो गई। उसने अपना नेजा उठाया और उसे दाऊद के दे मारा, लेकिन नेजा उसे न लगा बल्कि दीवार में गड़ गया। उसके बाद साउल ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की। साउल के बेटे यूनतन और बहुत से इसराइलियों ने दाऊद की मदद की, लेकिन इसके बावजूद उसे साउल के पास से भागकर सहरा में छुपना पड़ा। तस्वीर नंबर 16। दाऊद साउल को कत्ल करने से बाज रहा। साउल ने अपनी फौज के साथ सहरा तक दाऊद का पीछा किया। रात के वक्त जब साउल और उसके आदमी सोए हुए थे, दाऊद और उसका दोस्त अबीशे साउल के खैमे में जा घुसे। अबीशे सोए हुए बादशाह को कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन दाऊद ने उसे रोक दिया। उसने कहा, जो कोई खुदावंद के चुने हुए बादशाह को मारेगा, खुदा उसे सख्त सजा देगा। दाऊद ने साउल के सरहाने से नेजा और पानी की सुराही उठा ली। जब वो डेरे से बाहर निकल गए तो दाऊद जोर जोर से पुकारने लगा ताकि लोग जाग उठें। उसने कहा, तुम लोगों ने अपने आका की रखवाली नहीं की, देखो ये तुम्हारे बादशाह का नेजा है। दाऊद ने साउल से कहा, जैसे मैं आज तेरे कत्ल से बाज रहा, इसी तरह खुदावंद मुझे भी मुआफ करे। बस इस वाक्य के बाद साउल ने दाऊद का पीछा करना छोड़ दिया। तस्वीर नंबर 17। दाऊद को बादशाह बना दिया गया। फिलिस्तियों ने दोबारा बनी इसराइल पर हमला कर दिया। बादशाह साउल और यूनतन मैदान जंग में मारे गए। तब लोगों ने दाऊद को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया। उसने अपना महल यरूशलेम के शहर में बनवाया। खुदा ने दाऊद से कहा, मैंने तुझे भेड़ों की निगहबानी करते हुए चुना और बनी इसराइल का बादशाह बनाया। मैं तुझे रूए जमीन पर अजीम लोगों की मानिंद अजीम इंसान बनाऊंगा। चुनाचे खुदा ने दाऊद को अजमत बख्शी और उसे बनी इसराइल के दुश्मनों पर फतह दी। तस्वीर नंबर 18। दाऊद और बतसबा। एक रोज दाऊद अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने एक खूबसूरत औरत को देखा जो नहा रही थी। दाऊद ने उसे हासिल करने की ख्वाहिश की। औरत का नाम बतसबा था। वो औरियाह की बीवी थी जो दाऊद की फौज का एक सिपाही था। और यह मैदान जंग में इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा था। पस दाऊद ने अपनी फौज के कप्तान को एक पैगाम भेजा। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि औरिय्याह को मैदान जंग में ऐसी जगह रखा जाए जहां उसकी मौत यकीनी हो। तब दाऊद बतसबा को अपने हां ले आया और वो उसकी बीवी हो गई। लेकिन जो दाऊद ने किया उससे खुदा नाखुश था। दाऊद और बतसबा का पहला बेटा मर गया और दाऊद ने खुदा से अपने इस हौलनाक फेल के लिए मुआफी मांगी। तस्वीर नंबर 19। खुदा का घर। दाऊद ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, फिर भी वो खुदा से प्यार करता था और उसकी खिदमत करना चाहता था। वो एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहता था जहां खुदा की परस्तिश हो, लेकिन खुदा ने उससे कहा, तू मेरा घर नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुत खून बहाया है। तुझसे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम सुलेमान होगा, वही मेरे लिए एक घर बनाएगा, मैं उसकी सल्तनत अब तक कायम रखूंगा। दाऊद ने मरने से पेशतर बहुत सी चीजें खुदा के घर के लिए तैयार की, लेकिन उसे बनाने की इज्जत सुलेमान को मिली। खुदा का ये घर बहुत खूबसूरत था। उसकी तामीर में 7 बरस लगे। कई बरसों तक यरूशलेम के इस अजीम मकाम में लोग खुदा की इबादत करते रहे और ये बात उन्होंने हमेशा याद रखी कि दाऊद उनका अजीम बादशाह था। तस्वीर नंबर 20। यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ। दाऊद के तकरीबन 1000 बरस बाद यीशु दाऊद ही के घराने में पैदा हुआ। उसकी मां कुंवारी मरियम थी, उसका बाप खुदा ताआला था। यीशु खुदा का सबसे बड़ा खादिम था। उसने लोगों को खुदा की बाबत सच्चाई की तालीम दी। उसने खुदा की कुदरत से बहुत मोजज़े किए। साउल ने, दाऊद ने और हम सब ने खुदा के खिलाफ गुनाह किए, लेकिन यीशु ने कभी कोई गुनाह न किया। एक दिन वो एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ। लोग पुकार पुकार कर कहते थे, अजीम है इब्ने दाऊद, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, क्योंकि लोग जान गए थे कि यीशु दाऊद से भी बड़ा है, वो इस जमीन के तमाम बादशाहों का बादशाह है। तस्वीर नंबर 21। परिंदों ने एलियाह को खाना खिलाया। दाऊद और सुलेमान के बाद इसराइल में कई बादशाह हुए। एक बादशाह का नाम अखियब था। उसकी एक बदकार बीवी थी जिसका नाम ईजबल था। उसने बहुत से खुदा के मानने वालों को कत्ल किया और वो लोगों को बाल देवता की पूजा के लिए मजबूर करती थी। एलियाह खुदा का नबी था। वो अखियब के पास गया और कहा, इसराइल के जिंदा खुदा के नाम से अगले 3 सालों में जमीन पर बारिश नहीं होगी। बस सरजमीन इसराइल में बड़ा कहत पड़ा, फिर भी खुदा ने अपने खादिम एलियाह की रखवाली की। उसने एलियाह को करीत नाम एक जगह पर भेजा जहां वो एक नदी से पानी पीता था और हर रोज परिंदे एलियाह के लिए खाना लाते थे। तस्वीर नंबर 22। एलियाह और आग। कहत के 3रे साल एलियाह ने अखियब और तमाम लोगों को कोहे करमल पर बुलाया। उसने उनसे कहा, अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैराव हो जाओ और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। लोगों ने एक बैल को बाल देवता की कुर्बानी के तौर पर काटा। तब एलियाह ने बाल के पुजारियों से कहा, तुम अपने देवता को पुकारना, मैं खुदावंद खुदा से दुआ करूंगा, जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। पुजारी सारा दिन बाल देवता को पुकारते रहे और कुर्बानी के गिर्द नाचते रहे। उन्होंने छुरियों से अपने आप को घायल किया, लेकिन आग न लगी। शाम के वक्त एलिय्याह ने कुर्बानगाह तैयार की, उसने उसे पानी से तर कर दिया। फिर उसने खुदा से दुआ की, यकायक आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने कुर्बानी और पानी दोनों को भस्म कर दिया। सब लोग पुकार उठे कि खुदावंद ही जिंदा खुदा है। तस्वीर नंबर 23। एलिय्याह आसमान पर उठा लिया गया। एलिय्याह ने बाल के पुजारियों को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो सब मक्कार थे। ईज़बेल ने एलिय्याह को जान से मार डालने की धमकी दी। एलिय्याह बहुत डरा और वो एक रेगिस्तानी मकाम की तरफ भाग गया। वहां खुदा एलिय्याह से मिला और फिर एलिय्याह का खौफ जाता रहा। वो लोगों को सिर्फ खुदा की इबादत करने की हिदायत करता रहा। उसने एलीशा को अपनी मदद के लिए चुना। एक दिन जब वो दोनों इकट्ठे जा रहे थे, तो एक आतशी रथ उनके दरमियान से गुजरा। खुदा ने एलिय्याह को एक बगुले में आसमान पर उठा लिया और एलीशा ने उसके बाद उसे फिर न देखा। तस्वीर नंबर 24। एलिय्याह, यीशु और मूसा के साथ। यीशु के जमाने में कोई 700 बरस बाद एलिय्याह दोबारा जमीन पर उतरा। एक दिन वो यीशु के साथ एक पहाड़ पर नजर आया और उनके साथ खुदावंद का अजीम पैगंबर मूसा भी था, जो एलिय्याह से कई बरस पहले इस दुनिया में आया। तीन आदमियों ने उन्हें खुदावंद के जलाल से मुनव्वर देखा। तब खुदा ने आसमान से कलाम किया और उसने कहा, ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। अजीजो, खुदा ने और बनी इसराइल के तमाम बड़े नबियों ने यीशु की तरफ इशारा किया। यीशु तमाम इंसानों की खिदमत के लिए आया। वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ और वो मरकर जिंदा हुआ, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। उसकी सुनिए और हमेशा की जिंदगी पाइए।